हफ्सा बिनते उमर बिन खत्ताब ये कौन हुई? हजरत उमर की बेटी थी। हजरत हुनैस बिन हुजाफा सहमी के अकद में थी, यानी इनकी भी पहले शादी हो चुकी थी हुनैस नाम के एक शख्स से। इन्हें गजवा बदर में एक जख्म आया था जो बाद में फूट पड़ा और इसकी वजह से वो बदर और उहद के दरमियानी अरसे में इंतकाल कर गए। जब हजरत हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा की इद्दत गुजर गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान 3 हिजरी में इनसे शादी कर ली। उन्होंने 60 साल की उम्र में मदीना में शाबान 45 यानी 45 साल हो चुके थे हिजरत को, 45 हिजरी में वफात पाई और बकी में दफन हुई। नबी सल्लम के बाद कितना जी? 35 साल, 35। और इनकी भी कंट्रीब्यूशन है हजरत हफ्सा की भी। तो गोया कि आप देखिए कि हजरत हफ्सा के साथ आपकी शादी, अबू बकर एक तरफ आपके ससुर बने तो उमर भी बने। बहुत कम लोग इस बात पे गौर करते हैं कभी, हालांकि पता सबको ही होता है कि आपकी बेटियां नबी के निकाह में थी, लेकिन कभी इस पे मैंने बात नहीं सुनी, कम सुनी है लोगों से कि हजरत अबू बकर भी अल्लाह के नबी के ससुर थे, हजरत उमर भी। कैसा खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। और ससुर होने के बावजूद डरते कितना थे, रिस्पेक्ट कितनी करते थे, अल्लाह के नबी का ख्याल कितना रखते थे, मोहब्बत कितनी करते थे। वो हिजरत की रातें याद कर लें जब अबू बकर ने आपके साथ गुजारी, या उमर फारूक जो कई दफ़ा उनके अंदर जलाल आया होता था, दीन की गैरत होती थी लेकिन नबी के कहने पे खामोश हो जाते थे। तो यहाँ से रिश्तों की खूबसूरती भी दिखती है। और हज़रत हफ्सा के साथ जो आपका निकाह हुआ ये बड़ा दिलचस्प वाक़ है। हज़रत हफ्सा का जब बेवा हुई तो बाप होने के नाते हज़रत उमर को इनकी फिक्र लाहा कोई। अब ये किसके पास गए? मुख्तलिफ लोगों के पास गए, डिटेल्स की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। हज़रत उस्मान के पास गए, क्या आप हज़रत हफ्सा से निकाह करना चाहते हैं? अब वो खामोश हुए, सोच के बताऊँगा। फिर बाद में कहा कि अभी मेरा इरादा नहीं है। इसी तरह अबू बकर के पास गए। आप सोचिए, बाप अपनी उम्र के लोगों को कह रहे हैं मेरी बेटी से शादी कर लो। फ़र्क ही नहीं होता था उस दौर में। आज हमने शादी को एक गुड़िया गुड्डे का खेल और इतनी चूँकि पिक्चराइज जो करना होता है, और मूवी भी तो बननी होती है ना कि बड़ी लड़की लगेगी कैसे। यकीन करें, सिर्फ आज बहुत सारी अच्छे रिश्ते लड़कियाँ इसलिए ठुकरा देती हैं कि लड़का साथ बैठा लगेगा कैसे। प्रोटोकॉल भी तो बहुत चाहिए ना। बाज़ लड़कियाँ कहती हैं हाँ मैंने एक शख्स चाहिए, दाढ़ी अभी नहीं चाहिए, शादी के बाद रख ले क्योंकि शादी की तस्वीरों में वो बड़ा बड़ा लगेगा, और इसी तरह की कहानियाँ। तो ये कुछ नहीं था, वो नेचुरल लोग थे, रूम टेम्परेचर पर जीते थे। तो हज़रत हफ्सा को जब इन्होंने पेश किया तो दोनों ने इनकार कर दिया, उस्मान ने भी कर दिया, अबू बकर ने। हज़रत उमर को गुस्सा आया, अल्लाह के नबी के पास गए। अबू बकर ने कहा कि उमर हो सकता है कि इसको अच्छा मिलेगा, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन बहरहाल फिर नबी सल्लम ने उनको निकाह का जब पैगाम दिया और उधर से हज़रत उस्मान जो थे उनको अल्लाह के नबी की बेटी का पैगाम मिल गया, तो बात दोनों की सच हो गई कि हफ्सा को उस्मान से अच्छा शौहर मिल गया और इसी तरह से हज़रत उस्मान को हज़रत हफ्सा से अच्छी बीवी मिल गई। तो बहरहाल इनका बहुत तस्करा नहीं मिलता, लेकिन जहन में याद था कि मिजाज की थोड़ी सी तेज़ थी, गुस्सा कर लेती थी। बाप कौन था? और बाप की तो गैरत दीन की थी ना, तो ये भी ऐसी थी। लेकिन ज़ाहिर है कि और इनका और हज़रत आयशा का बड़ा तकाबुल रहता था क्योंकि दोनों थोड़ी यंग भी थी और खूबसूरत भी थी। तो बहरहाल हज़रत हफ्सा से निकाह के बाद अगला निकाह जो आपका हुआ वो उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब, तो लिखते हैं हम सब आम, ज़ा से होता है, ज़ाल से ना लिखेगा, बिनते खुज़ैमा, खुज़ैमा कबीले का अमूमन नाम होता है, और हलालिया, हलाल लिखते हैं ना जैसे छोटा हा, उसी से हलालिया। ये सब चीज़ें पीछे से ख़ानदान और कबीलों की तरफ नस्बत होती थी। ये हज़रत उबैदा बिन हारिस रदी अल्लाहु अन्हो के निकाह में थी जो बदर में शहीद हो गए। इनके बाद रमज़ान 3 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे शादी कर ली। और कहा जाता है कि वो हज़रत अब्दुल्ला बिन हजश के निकाह में थी, वो जंगे ओहद में शहीद हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 हिजरी में इनसे शादी की। दोनों बातें 3 में हुई या 4 में हुई। इन्हें जाहिलियत में उम्मुल मसाकीन कहा जाता था क्योंकि वो मिसकीनों को खाना खिलाती थी। इसी तरह इनको लंबे हाथों वाली भी कहते हैं, जुल यदैन, क्योंकि इनके हाथ बड़े लंबे थे, यानी सदका खैरात बहुत करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के 8 महीने बाद या तकरीबन 3 महीने बाद रबीउसानी 4 हिजरी में इनका इंतकाल हो गया। कितनी कम मुद्दत अल्लाह के नबी के साथ रही है ये, लेकिन देखिए ऑनर मिल गई ना। نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو بقیع میں دفن کیا. تو آپ دیکھیے کہ آپ میں اس چیز کو نہیں محسوس کر سکتے, لیکن ہمیں اپنی بچیوں کو خاص طور پہ ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ تمہیں کوئی دیندار مل جائے اور تمہاری اس سے نسبت جڑ جائے, تمہارے لیے یہ بہت بڑی دولت ہے. جن کو علم کی قدر ہوتی ہے نا, ان کو علم والوں کی بھی ہوتی ہے. اسی طرح ایک مرد ہے, اگر اس کو خوبصورت عورت مل گئی, دولت والی مل گئی, بہت اچھی, ویل اینڈ گڈ, لیکن کسی کو کوئی دیندار عورت مل جائے وہ کتنی بڑی بات ہے. تو دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے رشتوں میں دین آئے. آپ اپنے بیٹوں کے لیے لڑکیاں ڈھونڈیں تو دین ڈھونڈیے, اور اسی طرح سے جب بیٹیوں کے لیے ڈھونڈیں تو دیندار لڑکے ڈھونڈیے. تھوڑا بہت لڑکی میں اگر اٹھان ہوگا نا, تو اچھا شخص اپنے اخلاق کے ساتھ اس کو موڑ دے گا. لیکن اگر تربیت ہی آپ نے اتنی کبر والی اور گردن اکڑا کے کی ہے, تو پھر نبھا ہونا مشکل ہے. تو بہرحال یہ اللہ کے نبی کی جو بیویاں تھیں, اپنے حالات اور اپنے حساب کے ساتھ آپ کے لیے بہت ہی بابرکت ثابت ہوئی تھیں. میں ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے, ام المساکین, ہاتھ لمبے کریں. آپ دیکھیں گے کہ ہر زوجہ کی کوئی نہ کوئی الگ خوبی آپ کو دکھتی ہے. جب آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں تو آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. اگلی بیوی جو ہیں اللہ کے نبی کی, ام المومنین حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ رضی اللہ عنہ تھی. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھی, یعنی عقد کہتے ہیں نکاح کو, گرہ میں, اور ان سے ان کی کئی اولادیں تھیں. ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جمادی الاخرہ 4 ہجری میں وفات پا گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 4 ہجری میں چند روز باقی تھے کہ ان سے شادی کر لی. یہ فقیح ترین اور عقل مند ترین عورتوں میں سے تھیں. 84 یعنی 84 ایئرس کی عمر میں 59 ہجری یعنی 59 ہجری میں, اور بعض کہتے ہیں کہ 62 ہجری میں وفات پائی اور بقیع میں دفن ہوئی. اس بیوی کے ساتھ بھی بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں. ام سلمہ بہت سمجھدار عورت تھیں. ان کے شوہر ابو سلمہ اور ان دونوں نے ہجرت کی, اول مہاجرین میں سے تھے یہ لوگ. ان کے شوہر جو بات سن کے آتے وہی آ کے اپنی بیوی کو سکھاتے, اور ایک دن آ کر انہوں نے اپنی بیوی کو سکھایا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ دعا سکھا دی کہ جب کسی کو کوئی غم پہنچے, کوئی تکلیف پہنچے, تو وہ کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کے بعد اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, کہ اللہ مجھے اس مصیبت کا اجر دے اور مجھے اس کا بہتر بدلہ دے. اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ آپ نے کہا کہ جو کسی صدمے کے موقع پہ اس کو پڑھ لے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ آخرت میں اس کا بدلہ دے گا اجر کی صورت میں, بلکہ دنیا میں نعم البدل بھی دے گا. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پھر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا, اور حضرت ام سلمہ نے یہی دعا پھر عدت میں پڑھی, اور عدت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو نکاح کا پیغام دیا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا. اور اس وقت ان کو تھوڑا سا اس میں پس و پیش بھی تھا کہ میں تو بڑی عمر کی ہوں. آپ نے کہا میری عمر بھی کچھ چھوٹی نہیں. کہنے لگی کہ میں بچوں والی ہوں, تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں, تمہارے بچوں کو میں اپنے بچے سمجھوں گا. کہنے لگی کہ میرے اندر غصہ ہے, طبیعت میں غصہ ہوگا, تو کہا کوئی بات نہیں, میں اللہ سے دعا کروں گا کہ تمہارا وہ غصہ کم ہو. اور یہ بڑی ببرکت ثابت ہوئی. ایک ایسا موقع تھا کہ صحابہ اور اللہ کے نبی کے بیچ میں ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی تھی, اور صدمے کے ساتھ اللہ کے نبی بہت دلگیر تھے, لیکن ان کے مشورے کے ساتھ اللہ کے نبی کو اللہ نے اس تکلیف سے بچایا. اور وہ موقع تھا حدیبیہ کا, کہ جب لوگ جا رہے تھے عمرے کی نیت سے لیکن روک دیے گئے. اللہ کے نبی نے کہا کہ احرام کھول دو, لیکن صدمہ اور شدت اتنی تھی کہ صحابہ نے آپ کی بات سن کے مانی نہیں, کبھی ایسا ہوا نہیں تھا. تو یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے. آپ مائیں, آپ کو پتا ہوگا جب آپ کے بچے آپ کی بات نہیں مانتے تو کتنا دکھ ہوتا ہے آپ کو. تو اللہ کے نبی جب دکھی تھے اپنے خیمے میں واپس آئے, تو میں سلمہ نے کہا کہ اللہ کے نبی غم نہ کریں, اصل میں یہ لوگ دکھی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے جذبات کو بھی سمجھنا چاہیے, کب وہ دکھی ہیں, کب وہ خوش ہیں, کب کیا بات کہنی ہے. تو بہرحال کہنے لگیں کہ آپ خود جا کے یہ عمل کرنا شروع کر دیں, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے جب ایسے ہی کیا, اپنا احرام کھولا, تو پھر صحابہ سے برداشت نہیں ہوا اور سب نے آ کے پھر اس کام کو کیا. اور ام سلمہ سے بھی بہت ساری احادیث موجود ہیں, اور علم کا بہت زیادہ ان کے پاس خزانہ تھا. اس کے بعد اگلی بیوی آپ کی ام المومنین حضرت زینب بنت حجش بن راب تھی رضی اللہ عنہا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی, کزن تھی آپ کی, उमैमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब की बेटी थी, यानी उमैमा आपकी फुफोजाद बहन थी, ये उनकी बेटी थी। इनकी शादी हज़रत जैद बिन हारिसा से की गई, लेकिन दोनों में हम आहंगी ना हो सकी, यानी अंडरस्टैंडिंग ना हुई, हत्ता कि हज़रत जैद ने तलाक़ दे दी। चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपना मुतबन्ना, मुतबन्ना कहते हैं ले पालक बेटा, यानी इमू बोला बेटा जिसको आज हमारे कल्चर में कहते हैं, बना रखा था, और इसकी वजह से इनको जैद बिन मोहम्मद कहा जाता था। और अहले जाहिलियत में रवाज था कि मुतबन्ना बेटे की बीवी को मुतबन्ना बनाने वाले बाप पर इस तरह हराम समझते थे जैसे हकीकी बेटे की बीवी हो, यानी मुंह बोला बेटा भी असली बेटे की तरह समझा जाता था। जब हज़रत जैद से हज़रत ज़ैनब की इद्दत गुजर चुकी तो अल्लाह ताला ने 7 आसमानों के ऊपर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनकी शादी कर दी। ये नोट कीजिए, इनका निकाह दुनिया में नहीं हुआ था, जवज ना कहा, हमने तेरा निकाह कर दिया उस औरत से, और अल्लाह के नबी डायरेक्ट इनके पास पेश हुए थे और मुतबन्ना बनाने की रस्म को लग करार दिया। ये ज़ीकात 5 हिजरी का वाक़िया है और कहा जाता है कि 4 हिजरी में किसी वक्त से बात पेश आई। बहरहाल आप देखिए कि ये कितना बड़ा अल्लाह के नबी का इम्तिहान था। इससे शायद मुश्किल कोई हुक्म मानना आपको नहीं लगा होगा कि पूरी सूरत अलअहज़ाब का आगाज़ अगर आप देखें इसी टॉपिक के गिर्द घूमता है कि अल्लाह नबी को कहते हैं आप लोगों से डरते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा शोशा उठ जाता है ना, लो जी ससुर ने बहू से शादी कर ली, लेकिन अल्लाह यही रस्में ही तो तुड़वा रहा था नबी के जरिए। अब आप देखिए इन शादियों में कोई चौंचले दिख रहे हैं आपको? कोई हमारी तरह मेहंदियाँ उपटन पहले फेरे पीले जोड़े और क्या कुछ है? सीधी सीधी शादियाँ थी, हालात की पैदावार थी आपकी शादियाँ। बहरहाल फिर आपने इनसे जब शादी की तो उसके बाद यानी अल्लाह ताला की तरफ से ये आपका एक इम्तिहान था जिसमें आप पूरे उतरे। ज़ीकत 5 हिजरी या 4 हिजरी में ये बात हुई। हज़रत ज़ैनब बड़ी इबादत गुजार और ज़बरदस्त सदका करने वाली खातून थी। 53 साल की उम्र में इनकी वफात हुई 20 हिजरी में, यानी ये 53 ईयर्स की थी और नबूवत का 20वां साल था। तो अल्लाह के नबी के बाद कितना जी? 10 साल। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उम्महातुल मोमिनीन में सबसे पहले इन्हीं ने वफ़ात पाई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और बकी में दफन की गई। इनके बारे में एक बड़ा खूबसूरत वाक़या हमें अहदीस में मिलता है। इनके भाई का इंतकाल हुआ। जब इनके भाई का इंतकाल हुआ, बड़े अच्छे सहाबी थे, 3 दिन जब गुजरे तो खुशबू मंगाई या रंग मंगाया और उसको इस्तेमाल किया और कहने लगी कि अल्लाह की कसम मुझे आज खुशबू या रंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इस बात की वजह से ये कर रही हूँ कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना कि जिस औरत का अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान है वो किसी मरने वाले पर सोग ना करे 3 दिन के सिवा, और सिर्फ वो औरत जिसका शौहर फौत हो तो वो 4 महीना और 10 दिन के लिए सोग करेगी। तो मैं आज रंग या खुशबू लगा कर अपने सोग के खात्मे का ऐलान करती हूँ। हमारा क्या हाल है? 10 दिन, फिर 40 दिन, फिर उसके बाद लंबी चौड़ी कहानियाँ और बरसियाँ, और कोई मर जाता है हम उसको कोई दुआ करे ना करे, लेकिन हम उसके नाम पे इस तरह के काम करते हैं। अगली ज़ौजा मुख्तरमा थी उम्मुल मोमिनीन हज़रत जुवैरिया बिनते अल हारिस। रईस थे ये बनी अब्दुल मुत्तलिक के, यानी बनी अब्दुल मुत्तलिक जो कबीला था उनके सरदार थे अल हारिस, और ये उनकी बेटी थी जुवैरिया। जुवैरिया किसको कहते हैं वैसे नाम के साथ? जौर से है ये, हमसाया। जार कहते हैं अरबी में हमसाये को, नेबर को, पड़ोसी को, तो जुवैरिया हमसाई। ठीक है, शाबान 6 हिजरी में गजवा बनु मुस्तलक के दौरान कैद की गई। ये गजवा वो है जो सीरत के सेशन में हम पढ़ चुके डिटेल्स, और हज़रत साबित बिन कैस के हिस्से में आई। उन्होंने तय कर लिया कि एक मखसूस रकम अदा करके आज़ाद कर देंगे उनको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरफ से मुकर्रर रकम अदा करके इनको आज़ाद कर दिया और शादी कर ली। और इससे बढ़कर मुसलमानों ने बनु मुस्तलक के 100 घराने भी आज़ाद कर दिए, यानी ये इतनी बाबरकत साबित हुई अपने ख़ानदान के लिए कि 100 घराने आज़ाद हुए, कि क्योंकि ये लोग अब अल्लाह के नबी के ससुराली बन चुके थे। 65 साल यानी 65 ईयर्स की उम्र में रबी अव्वल में, 56 यानी 56 हिजरी में, और बाज़ कहते हैं कि 55 यानी 55 हिजरी में इनकी वफात हुई। अब देखिए कि ये वो अल्लाह के नबी की ज़ौजा थी कि जो पहले क्या थी, किधर से आई? दूर से आई है ना, कबीला फर्क, खानदान फर्क, इलाका फर्क, लेकिन आप देखिए कि इनको इज्जत मिल गई। हम कहते हैं खानदान से बाहर शादी नहीं कर सकते, अपने खानदान को चाहे किसी के साथ कोई मैच होता ना हो तो हम इस बात पे जोर देते हैं। फिर इसके बाद अगली बीवी जो थी आपकी, वो उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रमला बिनते अबू सुफियान थी, यानी अबू सुफियान की बेटी थी। बड़ी अजीब वैसे मुझे ये शादी भी लगती है। बाप आखिरी उम्र तक इस्लाम से दूर रहे, फतेह मक्का के मौके पे मुसलमान हुए, बेटी पहले निकाह में दे दी। यानी कुफर पे है बाप और अल्लाह के नबी को बेटी दे रहा है क्योंकि बेटी मुसलमान हो गई है। ये देखिए अल्लाह के नबी के बारे में लोग कितना अच्छा गुमान करते थे। आज के मुसलमानों के लिए अगर लोग ऐसे सोचने लग जाए ना कि नहीं ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये पीसफुल लोग हैं, तो कभी भी खराबियां पैदा ना हो। बहरहाल ये उबैदुल्ला बिन हजश के अकद में थी, और जब इससे हबीबा पैदा हुई, उम्मे हबीबा इनको क्यों कहते हैं, कुन्नियत है, बेटी हबीबा की तरफ जाती है, तो इनकी निस्बत से इनकी कुन्नियत उम्मे हबीबा पड़ गई। उन्होंने उबैदुल्ला के साथ हबशा हिजरत की, लेकिन वो नसरानी हो गए, नाउज़ बिल्ला, लेकिन इनके शौहर मुर्तद हो गए थे, और हालत इर्तदाद यानी मुर्तद होने की हालत ही में वफात पा गए। मगर उम्मे हबीबा इस्लाम पर कायम रहीं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमर बिन उमैया दमरी को नामे मुबारक यानी अपना ख़त देकर निजाशी के पास रवाना किया, तो इसे हुक्म दिया कि उम्मे हबीबा की शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दें। अब आप देखिए ना, परदेश में एक औरत है, अकेली है, शौहर मुर्तद हो गया, अब क्या करे ऐसी औरत। अल्लाह ने उसका इंतज़ाम करा दिया, नजाशी ने आपसे इनकी शादी कर दी, और अपने पास से 400 दीनार बतौर मेहर देकर शरहबील, अब ये नाम से ही है, कुछ लोग इसको शरजील पढ़ते हैं उर्दू वाले, तो शरहबील बिन हसना रदी अल्लाह अन्हो के साथ इनको रवाना किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर से वापस आकर सफ़र या रबी अव्वल 7 हिजरी में इन्हें रुख्सत कराया, और 42 या 44 यानी 42 और 45 हिजरी में इनकी वफात हुई। अब यहाँ भी आप देखिए कि इस निकाह में क्या हो रहा है, गायबाना निकाह, दूर परदेश में, और सबसे बड़ा कहते हैं कि हक महर इनका ही था और किसी और ने दिया। इस निकाह से एक और खैर निकली कि अगर लड़का खुद हक महर नहीं दे सकता तो कोई दूसरा उसकी तरफ से दे देगा। फिर आप देखिए कि अल्लाह ने इनको कितने बड़े सदमे में डाला, शोहर फौत हो जाए ना और बात होती है, लेकिन जब दीन छोड़ गया, बेदीन हो गया, तो बहुत ही बड़ी तकलीफ की बात है एक औरत के लिए, लेकिन अल्लाह सुबहाना ताला ने उनको उनका बेहतरीन बदला नबी सल्लम की सूरत में दिया। फिर इसके बाद आपकी अगली शादी हजरत सफिया बिनते हुयई बिन अख्तब से हुई। हुयई बिन अख्तब यहूद के एक सरदार थे, और हजरत सफिया उनकी बेटी थी, बनू नज़ीर के ये सरदार थे, आप कह लीजिए शहजादी थी, क्योंकि उस दौर में तो ज़ाहिर है कि ख़ासतौर पे ज्यूस में जो लीडर और सरदार होते थे उनका बड़ा रोब होता था, बड़ी शान थी, और बनी इसराइल में हजरत हारून की नस्ल से थी। खैबर में कैद हुई, रसूलुल्लाह ने इन्हें अपने लिए मुंतखब फरमाया और इन पर इस्लाम पेश किया, वो मुसलमान हो गई। आपने इनको आज़ाद करके इनसे शादी कर ली, यानी आज़ाद किया फिर शादी की। ये फतेह खैबर 7 हिजरी के वक्त की बात है। मदीना वापस होते हुए खैबर से 12 मील के फासले पर वादी सहबा पहुँच कर इनको रुख्सत कराया 50 हिजरी में, और कहा जाता है कि 52 यानी 50 और 52 हिजरी में, और बास कहते हैं कि 36 हिजरी 36। अब ये क्यों नहीं पता डेट्स, इस्लाम बरसियाँ नहीं मनाता ना इसलिए, और इस्लाम सालगिरह नहीं मनाता इसलिए, ना किसी का पैदा होना इतनी बड़ी बात है और ना किसी का मरना, अल्लाह के काम चलते ही रहते हैं, तो इसलिए चूंकि मनाते नहीं थे तो याद भी नहीं रहती थी, तो 36, 52 या फिर 50 इनमें से किसी एक साल में इनकी वफात हुई और बकी में दफन की गई। आप नोट करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर बीवियां बकी में दफन हुई, क्योंकि मदीना में रहती थी तो वहां फिर बकी कब्रिस्तान सबसे अच्छा था। हजरत सफिया के बारे में भी बहुत खूबसूरत बातें हमें मिलती हैं कि खूबसूरत भी थी, और इनकी शादी चूंकि पहले हुई हुई थी, यहूदी थी, इन्होंने ख्वाब देखा और अपने शौहर को बताया सुबह उठ के कि मैंने ख्वाब देखा है कि चांद आसमान से टूट के मेरे घर के आंगन में गिरा। तो इनके शौहर ने इनको ज़ोर से थप्पड़ मारा, कहने लगी तू नबी की बीवी बनने का ख्वाब देख रही है, यानी इतना कट्टर यहूदी था कि उसको पता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, और ये चांद की तरह एक चमकते हुए बद्र मुनीर है, और बीवी ने उनको अपने घर में देखा है तो ये होगा। इनके चेहरे पे कहते हैं कि निशान भी था थप्पड़ का, इतना गुस्सा उसने किया और अल्लाह ने वो बात सच कर दी। छोटे कद की थी। एक मौके पे हजरत आयशा ने इनका तस्करा करते हुए बस इस तरह हाथ से कह दिया, ऐसे छोटी जैसे ठिगनी, कि अल्लाह के नबी आपको कैसे किफायत करती हैं ऐसे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आयशा तूने इतनी कड़वी बात कही है कि अगर दुनिया के समंदरों में डाल दी जाए तो वो इसकी कड़वाहट से कड़वा हो जाए। अल्लाह अकबर। इसके बाद अगली बीवी हैं उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना बिनते हारिस हिलालिया। ये हजरत अब्बास की बीवी उम्मुल फजल लुबाबा अल कुबरा बिनते हारिस हलालिया की बहन है, यानी हजरत अब्बास की साली थी। इनसे रसूलुल्लाह ने ज़िलक़ादा 7 हिजरी में उमरे कज़ा से अहराम खोलने के बाद शादी की, और मक्के से 9 मील के फासले पर मुकामे सरिफ में इनको रुख्सत कराया। इनकी वफ़ात भी मुकामे सरिफ ही में 61 यानी 61 हिजरी में हुई, और कहा जाता है कि 63 यानी 63 हिजरी में, और कहा जाता है कि 38 यानी 38 हिजरी में हुई, और वहीं दफन भी हुई। इनकी कब्र अब भी वहाँ मारूफ है। अब आप देखिए कि कुछ के नाम आपने पहले सुने हुए थे, कुछ के नहीं, लेकिन ये खुलासा था उन 11 औरतों का जिस पे सबका इत्तफाक है कि ये अल्लाह के नबी की बीवियाँ थीं और उम्महातुल मोमिनीन में थीं।